अयनवर्ती आर्द्र शुष्क जलवायु अथवा सवाना तुल्य जलवायु, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट आर सवाना क्लाइमेट, विच इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल ए स्मॉल डब्लू। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। अयनवर्ती सवाना तुल्य जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री और 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन और अर्धशुष्क स्टेपी, कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू, जलवायु के बीच संक्रमण क्षेत्रों ट्रांजिशनल जोन में स्थित है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण सवाना तुल्य जलवायु वर्षा उत्पन्न करने वाले अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तथा शुष्कता प्रधान उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब क्षेत्र के मध्य में स्थित है। वायुदाब तथा पवन पेटियों के विस्थापन के कारण 5 डिग्री और 15 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र तथा डोल्ड्रम्स के प्रभाव क्षेत्र में रहता है, जबकि शीतकाल में इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवन तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रति चक्रवातों का प्रभाव रहता है। इसीलिए सवाना तुल्य जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। इस जलवायु प्रदेश की ध्रुवीय सीमा अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र के ध्रुवों की ओर विस्थापन की सीमा द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि भूमध्य रेखा की ओर इसकी सीमा का निर्धारण सूखा उत्पन्न करने वाले उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवातों के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होने की सीमा से होता है। किसी महाद्वीप के पूर्वी किनारे इसकी सीमा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अथवा चीन तुल्य जलवायु से निर्धारित की जाती है। सवाना तुल्य जलवायु के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, कोलंबिया और वेनेजुएला सहित और निको घाटी का लेनोस, गायना के पठारी क्षेत्र तथा ब्राजील का कैंपोस में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना तुल्य जलवायु के विशाल क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु क्षेत्र के दोनों ओर पाए जाते हैं। कांगो बेसिन के दक्षिण में सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश को वेल्ड कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देश हैं जेरे का दक्षिणी भाग, अंगोला, जेम्बिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, युगांडा, रोडेशिया का मध्यवर्ती भाग तथा मालागासी के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग। कांगो बेसिन के उत्तर में सूडान के विस्तृत क्षेत्र में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की जलवायु मध्य नाइजीरिया, केनिया और युगांडा के दक्षिणी भाग, अफ्रीका के गणराज्य कैमरून, डहोमी, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट तथा पूर्वी गिनी में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी पाई जाती है। तापमान टेम्परेचर। सवाना तुल्य जलवायु के अधिकांश प्रतिनिधि क्षेत्र 5 डिग्री से 10 डिग्री और 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होने के कारण दोपहर का सूर्य वर्ष भर लगभग सिर के ऊपर से अधिक दूर नहीं होता, जिससे विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई में अधिक अंतर नहीं रहता। इसीलिए इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है और औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। तापमान की दृष्टि से सवाना तुल्य जलवायु और भूमध्यरेखीय जलवायु में विशेष अंतर नहीं है। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सवाना प्रदेशों में भूमध्य रेखीय प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होता है। साधारण तौर पर वार्षिक तापांतर 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से भूमध्य रेखा से दूरी है। शीत ऋतु शुष्क होती है, आकाश में बादल नहीं रहते जिसमें तापमान नीचे गिर जाता है। इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु के ठीक पहले ऊंचे तापमान अंकित किए जाते हैं। इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर के अपेक्षाकृत अधिक होने का यह एक अन्य कारण है। वर्षा प्रेसिपिटेशन। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, किंतु वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा परिवर्तनशील होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र अथवा मानसूनी जलवायु तथा स्टेपी जलवायु क्षेत्रों के मध्य स्थित होने के कारण इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। भूमध्य रेखीय किनारे की ओर ध्रुवीय किनारे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। सामान्य रूप से स्टेपी जलवायु वाले किनारे की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। समानातुल्य जलवायु प्रदेश में वर्षा का मौसमी वितरण अत्यंत जटिल है। शीतकाल में पवन पेटियों के विस्थापित हो जाने के कारण सवाना प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है, जिससे मौसम शुष्क रहता है। इन प्रदेशों के ध्रुवीय किनारों की ओर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों से शुष्क एवं धूल भरी हवाएं चलती हैं। सहारा के दक्षिण में इस स्थानीय पवन को हर्मटेन तथा मिस्र में इसे खमसिन नाम से जानते हैं। उस समय यहाँ की जलवायु रेगिस्तान की भांति शुष्क हो जाती है। ग्रीष्मकाल में सवानातुल्य जलवायु में वायु आर्द्रता से भरी रहती है और अनेक तड़ी झंझाओं से भारी वृष्टि होती है। अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जलवायु के समान हो जाती है। उदाहरण के लिए सूडान में संवहनी वृष्टि कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन तथा तड़ी झंझाओं से मूसलाधार वृष्टि होती है। जो वर्षा मार्च में प्रारंभ होती है उसकी मात्रा जुलाई अथवा अगस्त तक बढ़ती जाती है। उस समय अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा से अधिकतम दूरी पर होता है। शीतकाल में जब अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगता है, तब वहां की मात्रा कम होने लगती है और अक्टूबर अथवा नवंबर तक सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश शुष्क मौसम का अनुभव करते हैं। इस समय इन प्रदेशों के ऊपर उपोष्ण कटिबंध की उच्च वायुदाब प्रणाली की अवरोही अस्थायी वायु राशि का प्रभाव रहता है। आर्द्र तथा शुष्क मौसम की लंबाई विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर करती है। विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर शुष्क मौसम अधिक लंबा होता है। सवाना प्रदेश अपनी ध्रुवों की ओर वाली सीमा पर शुष्क मरुस्थली जलवायु से मिल जाते हैं। तंजानिया और कीनिया इसके उदाहरण हैं, किंतु विषुवत रेखा की ओर सवाना तुल्य जलवायु धीरे धीरे भूमध्य रेखीय जलवायु में मिल जाती है। सवाना तुल्य जलवायु में वर्षा की कुल मात्रा में कमी के अतिरिक्त इसकी विश्वसनीयता में भी भारी कमी हो जाती है। एक वर्ष से दूसरे वर्ष वर्षा की कुल मात्रा में 50 से 150 सेंटीमीटर का अंतर हो सकता है। यह स्मरणीय है कि ध्रुवों की ओर वर्षा की विश्वसनीयता निरंतर कम होती जाती है। कभी कभी देर से वर्षा प्रारंभ होने अथवा उसकी मात्रा में कमी पड़ने से सवाना प्रदेश में सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत कभी लंबी अवधि तक भारी वर्षा होने से भयानक बाढ़ आ जाती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु को सवाना नाम यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के कारण दिया गया। यहाँ घास के मैदानों में छिटपुट वृक्ष और ऐसी झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनमें सूखे को सहने की शक्ति होती है। यहाँ के वृक्ष प्रायः पर्णपाती डेसिडियस होते हैं, जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिराकर वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि से अपनी रक्षा करते हैं। वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे शुष्क मौसम में मिट्टी की नमी को प्राप्त किया जा सके। भूमध्य रेखा की ओर सवाना प्रदेश की घासें अधिक लंबी होती हैं और वृक्षों की लंबाई और उनकी सघनता में भी वृद्धि हो जाती है। जीव तुल्य जीव जंतु एनिमल लाइफ। सवाना प्रदेश में अनेक प्रकार के पशुओं के पाए जाने के कारण ही इसे विशाल आकार वाले उष्णकटिबंधीय जानवरों का प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में हाथी, जिराफ, जेब्रा, गेंडा तथा हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं। ये सभी शाकाहारी पशु होते हैं। सवाना के घास के मैदानों में अनेक प्रकार के मांसाहारी पशु भी पाए जाते हैं, जिनमें शेर, बाघ, तेंदुआ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ जंगली कुत्ते, भेड़िया, सियार तथा लकड़बग्घे आदि भी पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती अधिक नमी वाले भागों में पाए जाने वाले पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा पेड़ों पर चढ़ने वाले जानवर भूमध्य रेखी प्रदेश के जीव जंतुओं के समान होते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए स्मॉल एम। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां पवनों की दिशा में पूर्ण रूप से मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में अयनवर्ती गर्म महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं से भारी वर्षा होती है, जब शीतकाल में स्थल से महासागरों की ओर चलने वाली हवाएं मौसम को शुष्क बना देती हैं। आदर्श मानसूनी जलवायु पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। एशिया के इन देशों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत, बर्मा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दक्षिणी चीन तथा फिलीपींस। इनके अतिरिक्त मानसूनी हवाओं का प्रभाव ताइवान, जापान तथा कोरिया आदि देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि महाद्वीप और महासागर के मध्य शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण इनके तापमान में मौसमी परिवर्तन के फलस्वरूप पवनों की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्चावचन, तटरेखाओं की दिशा तथा मानसून के शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विस्तार के फलस्वरूप एशिया के विशाल महाद्वीप पर मानसूनी जलवायु के कई प्रकार पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी चीन सागर को पार करके उसके तटवर्ती पर्वतमालाओं से टकराने वाली शीतकालीन मानसूनी हवाएं तट की दिशा के कारण ही यहाँ काफ़ी वर्षा करती हैं। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है। एशिया के अतिरिक्त अन्य महाद्वीपों में ऐसे भी क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ मौसम के साथ प्रचलित पवनों की दिशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है, जिससे वहाँ की जलवायु की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन क्षेत्रों के तथाकथित मानसून को मानसूनी प्रवृत्तियाँ मानसूनल टेंडेंसीज कहा जाता है। उस कटिबंधीय अफ्रीका में गिनी तट, सियरा लियोन, लाइबेरिया तथा आइवरी कोस्ट में मानसून तुल्य जलवायु पाई जाती है, जहाँ ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से तट की ओर तथा शीतकाल में महाद्वीप से महासागर की ओर उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा पवने चला करती हैं। उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अफ्रीका के सक्रिय तटवर्ती क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु वर्षा काल होती है, जबकि शीत ऋतु शुष्क होती है। इसी प्रकार पूर्वी अफ्रीका का भूमध्य रेखीय क्षेत्र तथा मालागासी के तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु में वस्तुतः मानसूनी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व तट पर भी मानसूनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार ओर्निको नदी के मुहाने से लेकर गायना, सूरीनाम, फ्रेंच गायना तथा ब्राजील के उत्तरी पूर्वी तट तक है। इसी प्रकार मध्य अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में भी मानसून प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तापमान टेम्परेचर। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले तटवर्ती प्रदेशों में तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, किंतु तापमान में स्पष्ट रूप से वार्षिक चक्र एनुअल साइकिल पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के ठीक पहले अंकित किया जाता है, जबकि आकाश स्वच्छ रहता है। वर्षा ऋतु में बादल और वृष्टि के कारण तापमान में निश्चित रूप से कमी हो जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भारत के उत्तरी मैदान में मई और जून के आरंभिक दिनों में सर्वोच्च अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस से 48.9 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किए जाते हैं। कभी कभी इन मैदानी भागों में भी अत्यधिक गर्म और शुष्क तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। शीतकाल में आंतरिक क्षेत्रों में स्थित स्थानों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 26.7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। विषुवत रेखा से दूर स्थित क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आ जाती है। इस जलवायु क्षेत्र के कुछ भागों में शीतकाल में न्यूनतम तापमान हिमांक से काफी नीचे अंकित किया जाता है। इस जलवायु में वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखीय जलवायु की अपेक्षा अधिक होता है। वार्षिक तापांतर में 2 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर विशेष उल्लेखनीय है। इस अंतर को नियंत्रित करने वाले कारक इस प्रकार है: महाद्वीपीय स्थिति, कॉन्टिनेंटलिटी, वाष्पदाब वेपर प्रेशर, मेघाच्छन्नता, क्लाउडिनेस, अक्षांश लैटिट्यूड्स तथा ऊंचाई एल्टीट्यूड्स। इलाहाबाद का वार्षिक तापांतर 18.4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आगरा का 20.2 डिग्री सेल्सियस है। इन अंतःस्थलीय स्थानों के विपरीत रंगून तथा मुंबई के वार्षिक तापांतर उनकी तटवर्ती स्थिति के कारण क्रमशः 5.3 डिग्री सेल्सियस तथा 11 डिग्री सेल्सियस है। दैनिक तापांतर भी काफ़ी अधिक पाया जाता है। मद्रास में 11 डिग्री सेल्सियस से कम, मुंबई 8.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि सिंध में दैनिक तापांतर 16.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंकित किया जाता है। दैनिक तापांतर की दूसरी विशेषता यह है कि वर्ष के अन्य भागों की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के शुष्क महीनों में यह बहुत अधिक होता है। वायुदाब एवं पवन, प्रेशर एंड विंड्स। एशिया में मानसून संचार प्रणाली अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र के विस्थापन से नियंत्रित होती है। महाद्वीप तथा समीपवर्ती महासागरों के असमान ऊष्मन के फलस्वरूप एशिया के विशाल भूखंड पर वायुदाब प्रवणता उलट जाती है। शीतकाल में महाद्वीप के ऊपर उच्च वायुदाब केंद्रों की स्थापना हो जाने के कारण महासागरीय न्यून वायु दाब केंद्रों की ओर पवन प्रवाह होता है। पूर्वी और दक्षिण एशिया में इन पवनों को शीतकालीन मानसून अथवा शुष्क मानसून की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु में एशिया के विस्तृत भूखंड के उष्मन के फलस्वरूप न्यून वायु दाब केंद्रों लो प्रेशर सेंटर्स की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र के विस्थापित होकर भारत में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है, जिससे पहले से स्थापित न्यून दाब केंद्रों में हवा का दबाव और कम हो जाता है। इन परिस्थितियों में वायु दाब प्रवणता सागर से स्थल की ओर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में महासागरों से महाद्वीपों की ओर तटवर्ती हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं गर्म महासागरों की सतह से भारी मात्रा में जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं में जो दक्षिण एशिया में दक्षिण पश्चिम से तथा पूर्वी एशिया में दक्षिण पूर्व से चलती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में भारी वर्षा करने की क्षमता होती है। शीतकाल के आगमन के साथ ही न्यून वायु दाब क्षेत्रों की जगह उच्च वायु दाब क्षेत्र विकसित होने लगते हैं। इसके साथ ही वायु दाब प्रवणता एक बार फिर उलटकर स्थल से जल की ओर हो जाती है। वास्तव में जिसे हम शीतकालीन मानसून कहते हैं, वह उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की पुनः स्थापना मात्र है। इन पवनों से केवल उन्हीं क्षेत्रों में वर्षा होती है जहां ये समुद्र के ऊपर से चलकर पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून संचार प्रणाली की प्रक्रिया को समझना बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें धरातल तथा वायुमंडल के ऊपरी भाग की संचार प्रणालियों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। विश्व के अन्य मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में वायुदाब एवं पवन तंत्र अनेक कारकों से नियंत्रित होते हैं, जैसे वायुदाब एवं पवन पेटियों का विस्थापन, धरातली उच्चावचन तथा स्थानीय महत्व के अन्य कारक। वर्षा, प्रेसिपिटेशन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्षा भारी मात्रा में होती है, किंतु इसमें शुष्क ऋतु स्पष्ट रूप से पाई जाती है जो छोटी होती है। वर्षा ऋतु में होने वाली वृष्टि की कुल मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ महीनों में सूखा मौसम रहने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मृदा आर्द्रता को धारण करके वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। संपूर्ण वृष्टि का लगभग 85%, जब महासागरों से तट की ओर भाप भरी हवाएं चलने लगती हैं। जहां कहीं ये हवाएं ऊपर उठने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाती हैं, वहां इनसे भारी वर्षा होती है। किंतु तटवर्ती क्षेत्रों में यदि इन हवाओं को रोकने वाले पर्वत अथवा पठार होते हैं, सबसे अधिक वृष्टि होती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तटवर्ती मैदानों में पश्चिमी घाट के वायु अभिमुख ढाल विंडवार्ड स्लोप पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उसी प्रकार बर्मा के तटवर्ती क्षेत्रों में अराकान तथा तनासरीन पर्वतमालाओं के वायु अभिमुख ढाल पर भी भारी वर्षा होती है। यह स्मरणीय है कि इन तटवर्ती पर्वत श्रेणियों के वायु अभिमुख ढाल लीवार्ड स्लोप्स पर वृष्टि छाया प्रभाव रेन शैडो इफेक्ट के कारण वृष्टि की बहुत कम मात्रा होती है। इंडोनेशिया तथा फिलीपीन के पश्चिमी तट और आंतरिक क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। कंबोडिया में वर्षा का वार्षिक औसत सामान्य तौर पर अधिक है। केवल 2 या 3 महीने ऐसे होते हैं जब वर्षा की मात्रा 2 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। इसके विपरीत थाईलैंड के भीतरी भागों में 5 से 6 महीने तक मौसम शुष्क रहता है। फिलीपींस के अधिकांश वर्षा प्रचंड उष्णकटिबंधीय तूफानों से होती है, जिन्हें यहाँ टाइफून कहते हैं। इन द्वीपों में सितंबर से नवंबर तक ऐसे तूफान प्रायः आया करते हैं। विश्व के अन्य मानसूनी क्षेत्रों में तटों की दिशा तथा भू आकृतियां वर्षा की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करती हैं। शीतकालीन मानसून के समय भारत में जनवरी और फरवरी के 2 महीने सबसे अधिक शुष्क होते हैं, किंतु भारत के उत्तरी क्षेत्र तथा गंगा घाटी के उत्तरी मैदानों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से थोड़ी वर्षा हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वृष्टि का वितरण अधिक असमान होता है। उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा घटती जाती है। इसके फलस्वरूप पंजाब तथा अन्य पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की जलवायु अर्धशुष्क होती है। मानसूनी जलवायु में वर्षा की परिवर्तनशीलता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। परिवर्तनशीलता का प्रतिशत उन प्रदेशों में अधिक होता है जिनमें सामान्य वर्षों में काम चलाने भर की वर्षा होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता के प्रतिशत में क्षेत्रीय अंतर एक अन्य विशेषता है। मानसूनी जलवायु में इस जलवायु में वर्षा के वार्षिक औसत की अन्य विशेषताएं यह है कि उसमें वार्षिक और स्थानिक अंतर पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार मुख्य रूप से वर्षा की मात्रा और उसके वितरण द्वारा निर्धारित होता है। विषुवत रेखा के निकट जहाँ वर्षा अधिक होती है, मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तरह होते हैं, किंतु वर्षा के मौसमी वितरण के कारण इन मानसूनी वनों में वृक्षों की प्रजातियों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, किंतु शुष्क क्षेत्रों में खुले और कम घने जंगल, कटीली झाड़ियाँ तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। भारत में वर्षा के वितरण और उसकी मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मालाबार और असम के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तरह घने जंगल पाए जाते हैं, जबकि सामान्य वृष्टि वाले क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन मिलते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अत्यधिक कम होती है, केवल कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। सागौन की लकड़ी बहुत मूल्यवान होती है, जिसके वृक्ष बर्मा तथा भारत के कुछ राज्यों में मिलते हैं। पतझड़ी वनों के में अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें शीशम, साखू, पलाश, महुआ, आम, जामुन, नीम, पीपल तथा बरगद आदि उल्लेखनीय हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पूर्व अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसे पतझड़ कहा जाता है। वास्तव में लंबी अवधि के शुष्क मौसम में नमी की सुरक्षा करने का पतझड़ एक प्राकृतिक उपाय है। पतझड़ी वनों में वृक्षों की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है और उनमें कम ऊंचाई पर शाखाएं निकली होती हैं। एक छोटे से छोटे क्षेत्र में वृक्षों की लगभग 30 से 40 प्रजातियां मिलती हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी और खुरदरी होती है ताकि नमी को सुरक्षित रखा जा सके। वृक्षों के शीर्ष भाग काफी बड़े और गोलाकार होते हैं। भारत के अतिरिक्त विशिष्ट प्रकार के मानसूनी वन बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया में पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका तथा मध्य और दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखीय वनों की सीमाओं के निकट पतझड़ वाले मानसूनी वन पाए जाते हैं। जीव जंतु एनिमल लाइफ अधिक नमी वाले क्षेत्रों में जहाँ बहुत घने वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय वनों की तरह उड़ने वाले तथा पेड़ों पर चढ़ने वाले जीव जंतुओं की प्रमुखता रहती है, किंतु शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वृक्षों के बीच दूरी अधिक होती है और बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं, बड़े जानवर अधिक संख्या में होते हैं। इन पशुओं में मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। शेर, चीता, तेंदुआ, सियार, हाथी, जंगली भैंसा, गैंडा, हिरन आदि जानवर इस जलवायु प्रदेश में मिलते हैं। अयनवर्ती उपोष्ण कटिबंधी उष्ण मरुस्थली जलवायु अथवा सहारा तुल्य जलवायु, ट्रॉपिकल आर सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट क्लाइमेट आर सहारा टाइप क्लाइमेट, विच इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच। वितरण। उपोष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलों का विश्व वितरण वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण तथा स्थल और महासागरों के विन्यास से जुड़ा होता है। विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित हैं। विश्व के सभी गर्म मरुस्थलों के बीच से कर्क अथवा मकर रेखा गुजरती है। उष्ण मरुस्थलीय अथवा सहारा तुल्य जलवायु निम्नलिखित मरुस्थलों में पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में चिली तथा पेरू के तटवर्ती मरुस्थल, अंगोला तथा दक्षिणी अफ्रीका के नामीब तथा कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना तथा दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डेजर्ट, सहारा तथा अरब के मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान का थार मरुस्थल तथा उत्तरी मैक्सिको का मरुस्थल। ये सभी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे स्थित हैं जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय प्रति चक्रवातों की अवरोही वायु राशियां सब्सिडाइडिंग एयर मासेज पाई जाती हैं। इन सभी प्रदेशों में नीचे उतरने वाली वायु राशियां संपीड़ित होने से रुद्धोष्म दर से गर्म होती हैं, जिससे उनकी वाष्प धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इन परिस्थितियों में वर्षा होने की तनिक भी संभावना नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त प्रति चक्रवात की अपसरण करती हुई वायु राशियों में वाताग्र निर्माण असंभव होता है, अतः वाताग्री वर्षा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन की गुंजाइश भी नहीं रहती। त्रिवार्ता के मतानुसार तीन ऐसे प्रमुख कारक हैं जो उष्ण मरुस्थलों की महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। पहला, महासागरों के ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्रों के पूर्वी भागों में वायु राशियों में अत्यधिक स्थिरता पाई जाती है। दूसरा, महाद्वीपों में पूर्वी किनारों को व्यापारिक पवनों से अधिक मात्रा में आर्द्रता प्राप्त होती है, जबकि पश्चिमी किनारे उन पवनों द्वारा आर्द्रता प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तीसरा, 15 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित हो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वायुमंडलीय विक्षोभों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि इसके विपरीत महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर बहुत बड़ी संख्या में तूफान आया करते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तट के निकट ठंडी महासागरीय धाराएं चलती हैं, वहां शुष्कता और अधिक बढ़ जाती है। ठंडी धाराओं के संपर्क में आने वाली वायु ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है, जिससे कोहरा उत्पन्न हो जाता है। वायु के इस प्रकार नीचे से शीतल होने के कारण वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रमणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वायु अत्यधिक स्थिर हो जाती है। इस प्रकार शुष्क और स्वच्छ मौसम में वायु में किसी प्रकार की ऊपर उठने की प्रक्रिया का अभाव पाया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रिया के तटवर्ती कोहरे कैलिफोर्निया, अटाकामा तथा नामबीब दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका की मरुस्थलों के तटों पर छाए रहते हैं। सहारा तथा ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत मरुस्थलों पर उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियों के विकास के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित रहती हैं। ये वायु राशियां शुष्क और अस्थायी होती हैं। ज्ञातव्य है कि इन मरुस्थलों में धरातल अत्यधिक गर्म होकर संवहन धाराओं को तो उत्पन्न तो करता है, किंतु अत्यधिक शुष्कता के कारण वायु के शीतलन के फलस्वरूप न तो संघनन होता है और न ही वर्षा होती है। कभी कभी कपासी वर्षी मेघों क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अथवा त्वरित झंझाओं से गिरती हुई वर्षा की बूंदें धरातल तक पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती हैं। तापमान विश्व के सभी उष्ण मरुस्थलों में सूर्याभिताप की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। सबसे ऊंचे तापमान अंकित किए जाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, वायुमंडल में बादलों के अभाव में सौर विकिरण का प्रकीर्णन नहीं होता और जलवाष्प की कमी से सूर्याभिताप का अवशोषण भी नहीं हो पाता। दूसरा, धरातली आर्द्रता के अभाव में उसका वाष्पीकरण नहीं होता। इस प्रकार धरातल को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। यह स्मरणीय है कि ऐसी वायुमंडलीय दशाओं में रात्रिकालीन शीतलन तीव्र गति से होता है, इसीलिए विश्व के सर्वाधिक दैनिक तापांतर उष्ण मरुस्थलों में अंकित किए जाते हैं। साधारण तौर पर दैनिक तापांतर 22 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किए जाते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में दैनिक शुष्कता के कारण छाया और धूप के लिए गए तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। ग्रीष्मकाल में एक ही अक्षांश पर स्थित क्षेत्रों की अपेक्षा मरुस्थलों में अधिक ऊंचे तापमान अंकित किए जाते हैं, जबकि शीत ऋतु में मरुस्थलों के तापमान काफी कम होते हैं। इसीलिए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। यहाँ वार्षिक तापांतर 17 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वर्षा प्रेसिपिटेशन उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलों में वाष्पीकरण सदैव वर्षण प्रेसिपिटेशन से अधिक होता है। इस जलवायु प्रदेश में होने वाली वर्षा अनियमित और अविश्वसनीय होती है। इन मरुस्थलों के अधिकांश भागों में वर्षा का वार्षिक औसत 12 सेंटीमीटर से कम होता है, किंतु अधिक आर्द्र किनारों की ओर वार्षिक औसत 50 से 75 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इन मरुस्थलों में लगातार कई वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, किंतु कभी कभी एक दिन में इतनी अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है जो अनेक वर्षों में होने वाली वर्षा की संपूर्ण मात्रा से भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए नामीब मरुस्थल के तट पर स्थित वाल्विस खाड़ी में वर्षा का वार्षिक औसत मात्र 3 सेंटीमीटर है, किंतु एक बार एक कमजोर तूफान से रात भर में 3.2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मरुस्थलों में यदि कभी भारी वर्षा होती है तो उससे आकस्मिक बाढ़ आ जाने से भीषण तबाही होती है, किंतु इस प्रकार आकस्मिक भीषण वर्षा से गिरा हुआ जल शीघ्र बहकर निकल जाता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता 40% से अधिक होती है। उष्ण मरुस्थलों में आपेक्षिक आर्द्रता केवल 10 से 30% तक ही रहती है, किंतु निरपेक्ष आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यही कारण है कि रात में ठंडक बढ़ने के साथ ही आपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ जाती है। इन मरुस्थलों में अधिकांश स्थानों में प्रातःकाल खूब ओस पड़ती है। दिन में धरातल के अत्यधिक गर्म हो जाने से वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके फलस्वरूप इन मरुस्थलों में तेज हवाएं चलने लगती हैं। धूल भरी और रेतीली हवाओं के चलने से वायुमंडल की पारदर्शकता कम हो जाती है, और इन रेतीली हवाओं के कारण वहां के निवासियों की आंखों और गले में तकलीफ हो जाती है। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन। पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि उष्ण मरुस्थलों में पानी की कमी होती है, अतः वहां बहुत कम प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन मरुस्थलों में दूर दूर तक धरातल वनस्पति रहित दिखाई पड़ता है। यहाँ जो थोड़ी बहुत वनस्पति उगती है वह मरुद्भिद जीरोफाइट होती है, जिसमें अत्यधिक सूखेपन की सहन शक्ति होती है। इन वनस्पतियों की छाल मोटी, पत्तियां चिकनी और कांटे होते हैं। इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। अपने तने और पत्तियों की कोशिकाओं में नमी का भंडारण करके मरुस्थली वनस्पति अपने को शुष्क दशाओं के अनुकूल बना लेती है। कैक्टस इसका उदाहरण है। बबूल जाति के ऐसे अन्य पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती है ताकि भूमिगत जल तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त फूलदार पौधे भी पाए जाते हैं। मौसमी परिवर्तन के साथ साथ वनस्पतियों में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जीव जंतु एनिमल लाइफ। इन मरुस्थलों में अत्यधिक शुष्कता के कारण जीव जंतु की संख्या बहुत कम होती है। वनस्पतियों की तरह यहाँ के जीव जंतु भी अपने को शुष्कता के लिए अनुकूल बना लेते हैं। मरुस्थलों में ऊँट ही बड़ा जानवर होता है जो पानी के बिना अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। विभिन्न प्रकार के सांप और छिपकलियाँ तथा रोडेंट सामान्य प्रजातियाँ हैं जो शुष्क जलवायु में जीवन निर्वाह करती हैं। अधिकांश जीव जंतु यहाँ बिलों में रहते हैं। दिन में ये जंतु बिलों में रहते हैं और रात में खाना और पानी की तलाश में अपने बिलों से बाहर निकलकर इधर उधर घूमते हैं। साधारण तौर पर मरुस्थली जीव जंतु बड़े आकार वाले नहीं होते। ऊंट इसका अपवाद है। निम्न अक्षांशीय स्टेपी जलवायु लो लैटिट्यूड्स स्टेपी क्लाइमेट विच इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच। निम्न अक्षांशीय स्टेपी जलवायु उष्ण मरुस्थलों तथा आर्द्र जलवायु प्रदेशों के बीच की संक्रमण पेटी में पाई जाती है। इनके भूमध्य रेखीय किनारों की ओर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु तथा तीव्र ध्रुवीय किनारों की ओर मध्यतापी जलवायु अथवा न्यून तापी जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु उपोष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवातों तथा व्यापारिक पवनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अतः मौसम में परिवर्तन के साथ ही वायुदाब तथा पवनों की पेटियों के विस्थापन के कारण यहाँ वर्ष के एक भाग में वर्षा करने वाली हवाएं तथा तूफान चला करते हैं। यहाँ वर्षा अनियमित तथा थोड़ी मात्रा में होती है। वर्षा काल छोटा होने के कारण यह जलवायु अर्धशुष्क होती है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। निम्न अक्षांशीय स्टेप जलवायु अफ्रीका में सहारा मरुस्थलों के उत्तर और दक्षिण पाई जाती है। यह उत्तर में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार मोरक्को से ट्यूनिशिया तक होता है। सहारा के दक्षिण में इस जलवायु का विस्तार सेनेगल में डाकार से लेकर इथोपिया तक, केनिया और सोमालीलैंड के कुछ क्षेत्रों में भी यह जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, बोत्सवाना और पश्चिमी रोडेशिया में भी स्टेपी जलवायु मिलती है। यूरेशिया में निम्न अक्षांशीय स्टेप जलवायु उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के प्रदेशों के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। अनातोलिया पठार, ईरानी मरुस्थल के उत्तर और दक्षिण के भाग, अफगानिस्तान के बहुत बड़े भाग में स्टेपी जलवायु मिलती है। थार के मरुस्थल के चारों ओर की पेटी इसी प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत, पेंसुलर इंडिया के वृष्टि छाया प्रदेशों में भी स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के विभिन्न भागों में इस प्रकार की जलवायु मिलती है, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी ब्राजील, वेनेजुएला के तटवर्ती क्षेत्र तथा एंडीज पर्वत के पूर्व अर्जेंटीना के वायु विमुख क्षेत्र लीवार्ड एरियाज। उत्तरी अमेरिका में स्टेपी जलवायु कैलिफोर्निया की मध्यवर्ती घाटी, दक्षिणी कंसास तथा मध्य मैक्सिको में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल के चारों ओर स्टेपी जलवायु पाई जाती है, किंतु मरुस्थल के पूरब में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार सबसे अधिक है। तापमान। स्टेप जलवायु में तापमान उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के समान होता है। शुष्क हवाओं के चलने से ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है। वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंकित किया जाता है, किंतु इस जलवायु में तापमान में अक्षांश, ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित फोर्ट स्टॉकटन का वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में स्थित डेली वाटर्स का वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। इस जलवायु में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान अधिक अंकित किए जाते हैं और दैनिक तापांतर भी अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण वनस्पति की कमी तथा स्वच्छ मेघ रहित आकाश है, जहां धरातल पर वनस्पतियों का आच्छादन होता है। वहां दैनिक तापांतर अपेक्षाकृत कम रहता है। वर्षा। निम्न अक्षांशीय स्टेप प्रदेशों में गर्म मरुस्थलों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इन प्रदेशों में वर्षा का वार्षिक औसत 25 और 50 सेंटीमीटर के मध्य होता है। वस्तुतः औसत वार्षिक वर्षा संभाव्य वाष्पोत्सर्जन से कम होता है। वर्षा न केवल थोड़ी मात्रा में होती है बल्कि वह अधिक परिवर्तनशील तथा अविश्वसनीय भी होती है। कुछ वर्षा में कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाया करती है किंतु कभी भयानक सूखा भी पड़ जाता है। स्टेप जलवायु वाले प्रदेशों की ध्रुवीय सीमाओं पर जो भूमध्य सागरीय जलवायु के समीप होती हैं अधिकांश वर्षा जाड़े में होती है। इसका कारण पौन पेटियों का विस्थापन है। शीतकाल में शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के मार्ग विषुवत रेखा के अधिक निकट होने से स्टेप को उनसे सामान्य वर्षा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जाड़े की वर्षा इन पेटियों में चक्रवातों तथा वातावरण के कारण मौसम परिवर्तनशील रहता है। चूंकि शीतकालीन वर्षा अल्पकालिक बौछारों के रूप में होती है अतः यह मौसम प्रायः स्वच्छ और शांत रहता है। स्टेप प्रदेशों की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। इसका एक कारण ग्रीष्मकाल में अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र का ध्रुवों की ओर विस्थापित होना है। शीतकाल में मौसम सूखा रहता है। यहाँ होने वाली वर्षा की कुल मात्रा आर्द्र तथा शुष्क सवाना जलवायु से कम होती है। स्टेप प्रदेश के जो भाग सवाना जलवायु प्रदेश के निकट होते हैं वहाँ वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु के निकटवर्ती प्रदेशों की अपेक्षा अन्य भागों में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति। निम्न अक्षांशी स्टेप जलवायु की विशेषता यह है कि यहाँ घासें छोटी और छिछली जड़ों वाली होती हैं, किंतु ध्रुवीय किनारे और भूमध्य रेखा की ओर वाले भागों की वनस्पति में अंतर पाया जाता है। वनस्पतियों की मात्रा और उनकी ऊंचाई को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश, ऋतुएं, अधिक आर्द्र जलवायु से निकटता तथा वर्षा की मात्रा है। अधिक शुष्क भागों में घासें टुकड़ों में पाई जाती हैं। इसके विपरीत आर्द्र भागों में धरातल पर सर्वत्र घासें उगती हैं जो उत्तम चरागाह का कार्य करती हैं। सवाना जलवायु की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में ठिगने पेड़, झाड़ियाँ तथा छोटी घासें पाई जाती हैं। जीव जंतु, एनिमल लाइफ अपेक्षाकृत अधिक वृष्टि तथा झाड़ियों और घासों की अधिकता के फलस्वरूप अनेक प्रकार के और अधिक संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। जंगली घोड़े, बाइसन तथा हिरण आदि जानवर घास चरने वाले होते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ सांप, रोडेंट तथा छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं। भेड़ और बकरियाँ यहाँ के मुख्य पालतू पशु हैं। मध्य अक्षांशी स्टेप जलवायु, मिडल लैटिट्यूड स्टेप्स क्लाइमेट्स, कैपिटल बी, कैपिटल एस, कैपिटल के। मध्य अक्षांशी स्टेपी जलवायु भी मरुस्थलों और आर्द्र जलवायु के बीच संक्रमण क्षेत्र में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होती है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये स्टेप्स महासागरीय प्रभाव से वंचित रहते हैं। मध्य अक्षांशी अथवा महाद्वीपीय स्टेप की महाद्वीपीयता ही इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। वितरण। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया महाद्वीपों के मध्य अक्षांशों में विस्तार के कारण कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल के अथवा स्टेप्स जलवायु उपयुक्त दोनों महाद्वीपों में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में मध्य अक्षांशी स्टेपी जलवायु रॉकी पर्वतमाला के पूरब में अल्बर्टा से कोलोराडो तक फैली हुई है। स्टेप प्रदेश उत्तरी राकी पर्वत तथा वाशिंगटन और ओरेगन के कास्केड्स पर्वतों के बीच पर्वतीय बेसिनों तथा कोलंबिया के पठारी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। सस्केचवान और अल्बर्टा राज्यों में इस प्रकार की जलवायु 54 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाई जाती है। तापमान मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु में शीत ऋतु बड़ी ठंडी होती है। इस प्रकार का ठंडा मौसम निम्न अक्षांशों में नहीं मिलता। अपनी आंतरिक स्थिति के कारण यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेप में ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म और शीत ऋतु अत्यधिक कठोर होती है, जिससे यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। 15 डिग्री से 25 डिग्री तक के अक्षांशीय विस्तार के कारण उत्तरी अमेरिका तथा एशिया के स्टेप्स प्रदेशों के उत्तरी और दक्षिणी भागों के औसत तापमान में भारी अंतर होता है। अक्षांश की दृष्टि से यहाँ का तापमान चरम सीमा पर होता है। रूस में ताशकंद और सेमिपेलेंटिस्क में जाड़े का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा -12 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्योमिंग में स्थित लैरमी में जनवरी और जुलाई के औसत तापमान क्रमशः -6.7 डिग्री सेल्सियस तथा 16.7 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ग्रीष्म काल में सबसे गर्म महीनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जनवरी का औसत हिमांक के से नीचे अंकित किया जाता है। शुष्क वायु तथा अन्य मरुस्थली अथवा अर्ध मरुस्थली दशाओं के फलस्वरूप दैनिक तापांतर अधिक होना स्वाभाविक है। दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में स्थलखंड संकरे होने के कारण वहाँ के मध्य अक्षांशीय स्टेप की जलवायु में मौसमी विषमता बहुत अधिक नहीं होती, किंतु वहाँ भी दैनिक तापमानतर ऊंचा होता है। वर्षा स्टेपी प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत मरुस्थलों से अधिक होता है। इन प्रदेशों में वर्षा का वार्षिक औसत 20 और 50 सेंटीमीटर के बीच होता है। यदि किसी वर्ष अधिक वर्षा होती है तो उसके बाद कई वर्षों तक सूखे की स्थिति पाई जाती है। इसके साथ ही साधारण तौर पर अधिकांश वर्षों में औसत वर्षा कम होती है। इन प्रदेशों में प्राप्त संपूर्ण वर्षा संभाव्य वात्पोत्सर्जन से कम होती है। वर्षा की मात्रा में वार्षिक विभेद पाया जाता है। स्टेपी जलवायु प्रदेशों में वर्षा का मौसमी वितरण अन्य जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस जलवायु वाले कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, जबकि अन्य कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में चक्रवातों से वर्षा होती है। मध्य अक्षांशीय स्टेप प्रदेशों की वृष्टि की प्रमुख विशेषताएं हैं परिवर्तनशीलता तथा अविश्वसनीयता। उत्तरी अमेरिका तथा एशिया के शीतोष्ण कटिबंधी स्टेप प्रदेशों में उष्ण कटिबंधी तथा ध्रुवीय वायु राशियों का निरंतर आगमन हुआ करता है, जिनके कारण इन प्रदेशों में अनवर्ती मौसमी परिवर्तन सामान्य बात है। शीतकाल में अधिकांश स्टेप प्रदेश प्रबल प्रतिचक्रवातों के प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे मौसम शांत और शुष्क रहता है। ऐसी तेज बर्फीली हवाओं को उत्तरी अमेरिका में मैदानी भाग उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों में ब्लिजार्ड कहा जाता है। इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु में धूल अथवा रेत से भरी हुई अत्यधिक गर्म हवाएं चला करती हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल। मध्य अक्षांशी अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा की कमी के कारण केवल झाड़ियां और छोटी घासें उगती हैं। इस प्रकार स्टेपी प्राकृतिक वनस्पति का सर्वोत्तम उदाहरण उत्तरी अमेरिका में छोटी घासों वाली प्रेरी है। दक्षिणी अफ्रीका में छोटी घासों वाले स्टेप प्रदेश को वेल्ड कहते हैं। इन घास के मैदानों में आजकल भारी संख्या में भेड़े और बकरियां पाली जाती हैं। मध्य एशिया के घास के मैदान घुमक्कड़ जातियों खिरगिज के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ये खानाबदोश होते हैं और अपने साथ भेड़ और बकरियों को लेकर चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते हैं। इन मैदानों में कुछ मांसाहारी जानवर भी पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय मरुस्थली जलवायु मिडिल लैटिट्यूड डिजर्ट क्लाइमेट, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी। इस जलवायु को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थली जलवायु टेम्परेट बोरियल क्लाइमेट भी कहते हैं। इन मरुस्थलों का तापमान उष्ण मरुस्थलों की अपेक्षा बहुत कम होता है। इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु काफी ठंडी होती है। वितरण उत्तरी गोलार्ध के सभी शीतोष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ऐसी निचली बेसिनों में पाए जाते हैं जो आंशिक रूप से पर्वतों अथवा पठारों से घिरी होती है। तारीस, गोबी, जुंगारिया, रूसी तुर्किस्तान तथा मध्यवर्ती ईरान, ये सभी मरुस्थल एशिया के विशाल महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित हैं। ये मरुस्थल 35 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट बेसिन क्षेत्र ऐसा ही एक मरुस्थल है। इन मरुस्थलों की अत्यधिक शुष्कता का कारण वृष्टि छाया प्रभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु पेटागोनिया में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया के ऐसे मरुस्थलों के दोनों ओर आर्द्र जलवायु मिलती है। इस शुष्क जलवायु को उत्पन्न करने के लिए निम्नांकित कारक उत्तरदायी हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में सभी वायु दाब और पवन पेटियां 5 डिग्री से 10 डिग्री ध्रुव की ओर विस्थापित हो जाती हैं, जिससे महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शुष्क महाद्वीपीय वायुराशियां विकसित हो जाती हैं। दूसरा, शीत ऋतु में इन प्रदेशों की ओर साइबेरिया और कनाडा के प्रति चक्रवातों से शुष्क और ठंडी ध्रुवीय हवाएं चलती हैं। तीसरा, इन प्रदेशों के चारों ओर फैले हुए पर्वत उन आर्द्र महासागरीय वायु राशियों के प्रवेश को रोक देते हैं जिनसे महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण ही ये मरुस्थल समीपवर्ती महासागरों से चलने वाली आर्द्र पवनों से होने वाली वृष्टि से वंचित रह जाते हैं। तापमान, चूंकि इस जलवायु प्रदेश में तापमान में ऋतुओं के अनुसार भारी अंतर पाया जाता है, अतः यहाँ तापमान का वार्षिक अंतर अधिक होता है। रूसी तुर्किस्तान में टुर्कुल, जो 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, का वार्षिक तापांतर 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगोलिया में उर्गा का जनवरी का तापमान -27 डिग्री सेल्सियस तथा जुलाई का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार वहाँ का वार्षिक तापांतर 44 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की तुलना में यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक रहता है और शीत ऋतु का तापमान काफ़ी कम होता है। शुष्कता तथा अन्य कारकों के कारण दैनिक तापांतर भी अधिक होता है। पैटागोनिया मरुस्थली और स्टेपी जलवायु के मध्य स्थित होने के कारण वहाँ महाद्वीपीय प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ न्यूनाधिक मात्रा में महासागरी प्रभाव भी पड़ता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में न अधिक गर्म और शीत ऋतु अधिक ठंडी भी नहीं होती। यहाँ दैनिक तापांतर ग्रीष्म ऋतु में 11 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 8 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। पैटागोनिया में धूल भरी आंधियाँ खूब चला करती हैं। वर्षा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी होती है। वर्षा की कमी होने के तीन प्रमुख कारक हैं। पहला, इन मरुस्थलों का प्रबल शीतकालीन प्रतिचक्रवात स्थापित हो जाता है। दूसरा, इन मरुस्थलों के बेसिन तुल्य क्षेत्र पर्वतों से घिरे रहते हैं। तीसरा, ये क्षेत्र महासागरों से बहुत दूर स्थित हैं। इन बातों के अतिरिक्त जब भाप भरी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें पर्वतों को पार करना पड़ता है। ऐसा करने में ये हवाएं दबती हैं और रुद्धोष्म दर से उनका उष्मन होता है, जिससे वे और अधिक शुष्क हो जाती हैं। ऐसे मरुस्थल जो भूमध्य सागरी जलवायु के निकट स्थित हैं, वहाँ अधिकांश वर्षा शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों से शीत ऋतु में होती है। ऐसे चक्रवातों से ही रूसी तुर्किस्तान तथा ईरान और अफगानिस्तान के ऊंचे पठारों पर शीतकालीन वृष्टि होती है। यहाँ बसंत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है। शीतकालीन वृष्टि जल वर्षा और हिम वर्षा के रूप में होती है। मर्व, तेहरान और क्वेटा नगरों की क्रमशः 63, 46 और 50% शीतकालीन वर्षा क्रमशः फरवरी, मार्च और अप्रैल में होती है। चूंकि वर्षा ऋतु में पर्वतों पर जमी हुई बर्फ पिघलती है, अतः नदियों में बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन में सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है। इसके विपरीत महाद्वीपों के भीतरी भागों के मरुस्थलों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। मंगोलिया, गोबी, तारिम तथा जुंगारिया आदि मरुस्थलों में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। मंगोलिया में मरुस्थल में स्थित उर्गा में संपूर्ण वृष्टि का 84% गर्मी के 3 महीनों में होती है। ग्रीष्मकालीन वृष्टि का अधिकांश संवहनिक वृष्टि से प्राप्त होता है। गर्म मरुस्थलों की भांति वर्षा की मात्रा परिवर्तनशील होती है, अतः उसकी विश्वसनीयता कम होती है।